भगवान का नाम ग्रहण करता है जो, किंतु होने पर भी अहो उसका हृदय नहीं विकृत होता और जिसके विकार नहीं होते माने अश्रुकम पुलक इत्यादि नहीं होते, नेत्र जलन आंखों में आंसू नहीं आते, गात्र रोमांचित और पुलकित नहीं हो जाता, तो वो कैसा है? श्मशान एकदम वज्र के समान, लोहे के समान कड़ा है। हरिनाम ग्रहण करने पर हरिनाम तो बहुत परम अभूषण होते, किंतु लेने पर भी ऐसा नहीं होता, तो समझो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम वो एकदम लोहे के समान। साधारण साफ हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कुछ टीका कर रहे हैं जो हम साधकों के लिए जानना जरूरी है। वो बतला रहे हैं सौनक ऋषि इन सब बातों को सुन करके यदि हरि भजन नहीं करता है तो शरीर के अंगों की क्या क्या मूल्य होता है ये बतलाते हुए अंत में ये बतला रहे हैं हरि भजन की श्रेष्ठता है और भाव में यदि विकार हृदय नहीं हुआ तो और पुलक इत्यादि रहने से भी कोई उसका मूल्य नहीं। यदि अंतर लक्षण नहीं है केवल ऊपर का ही लक्षण दिखाई पड़ता है तो अभी भाव मत समझो, साधारण लोग उसे मुग्ध हो जाते हैं। हर भक्तिहीन व्यक्ति का बाह्य अंग जो बतलाया अभी बेकार का है यदि हरि भजन में नहीं लगा अभी बतलाया, और अनर्थ मुक्त पुरुष का नाम ग्रहण मात्र से ही नाम का माधुर्य यहाँ पर अनुभूति होगी। अनर्थ मुक्त जो अनर्थ युक्त जो है वो नहीं समझेंगे, हर नाम ग्रहण कर रहे हैं कोटि कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कुछ न पड़े, एक दो जन्म नहीं, हम जिस रूप में भजन करते हैं उस रूप भजन करने में हम लोग देहात्म अभिमान रखकर लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन इत्यादि को अधिक महत्व देते हैं जो हम भजन करते हैं, तो ऐसे ही दूर चित्त द्रवित नहीं, ये सब लक्षण भी नहीं, उसी के लिए यहाँ पर ये बताया है। अनर्थ मुक्त पुरुष लोग जो हैं साधक हैं नाम ग्रहण के साथ ही साथ में उनका चित्त द्रवित हो जाता है, क्यों? भगवान के नाम का माधुर्य वो आस्वादन करने लगते हैं, उनका हृदय विकार हो जाता है और अंतर लक्षण में शांति रवत्थकावत्म विरक्ति मान शून्यता ये अंतर लक्षण में भी है उसमें भी है, तो वो कह रहे हैं जैसे ये सब चीजें और बाह्य लक्षण जो अश्रु पुलक रोमांच ये सब भी प्रकाशित हो जाए। बहुत बार अनेकों बार हरिनाम करने पर भी बहुत दिनों तक वर्षों तक हरिनाम करने पर भी यदि किसी का हृदय द्रवीभूत नहीं होता तो निश्चय ही वह व्यक्ति नामापराधी है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं। वो नमापराधी है ऐसा समझ लो कि हम लोग नमापराधी है यदि चित्त द्रवित नहीं होता और ऊपर का लक्षण असुर रोमांच कौन से क्या नहीं होता, तो सर्वशक्तिमान नाम देह गेह अर्थ जनता लोग पाषंड प्रकृति में निक्षिप्तम शान फल जनकम शीघ्र में वात्र विप्र बतला है। जगह में यदि हमारी आसक्ति देह में देह माने गृह में अर्थ में जनता की बाहबाही में प्रशंसा में लोभ प्रवृत्ति के लिए यदि हमारा हरिनाम कुछ हो जाता है ये सब रखते हुए तो भाई वो फलजनक वो नाम नहीं होता है, उसका माधुर्य आस्वादन नहीं होगा, चित्त द्रवित नहीं होगा। इसलिए हम लोगों में ये कमियां हैं, ऐसा समझ करके इसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त प्रतिबंधकों को माने बाधाओं को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक भगवान का माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। यदि थोड़ा सा भी प्रतिबंधक रहा, बाधा, सब कुछ हट गया, किंतु प्रतिष्ठा की लालसा है तो भी नहीं। मुक्ति की इच्छा है, बागनी चांद डाली, तो भी नहीं होगा। यदि थोड़ा सा प्रतिबंधक रहता है, प्रेम नहीं होगा, किंतु उस समय में उसका नाम नवाभास होता है, और अधिक प्रतिबंधक होने पर उसका नाम होता है नवापराध। यदि देह गेह पुत्र परिवार संसार में आसक्ति प्रचुर है और हर नाम भी कर रहे हैं, तो ये समझो यही नमापराध। और यदि अब थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी बाधाएं हैं तो समझो जैसे ये हमारा नाम आभास। किंतु बृहत प्रतिबंधक, बड़े बड़े प्रतिबंधक रहने पर वो नमापराधमा नाम बहिराय बटे नाम कभु नदाई नमाभास कभु नमाभास सदाई नमापराध ये सब जानिए भाई कृष्ण भक्ति। ये सब चीजें रहने पर कभी कभी नमाभास होगा और सब समय नमापराध, ये दोनों ही उसके लिए प्रतिबंधक हैं। तब तक कृष्ण प्रेम अनुभूत नहीं होगा, वो भाव नहीं होगा। नामापराधी का चित्त लोहे के समान कठिन होता है। हरिनाम ग्रहण करने पर भी, कीर्तन करने पर भी, सुनने पर भी चित्त द्रवित नहीं होता, मन ही नहीं लगता, मन उचाट सा रहता है, बड़ी मुश्किल से वो करता है। हरिनाम जरूर होना चाहिए, हरि कथा भी होनी चाहिए। हमारे एक सुंदरानंद विद्या विनोद बहुत पहले हो गए, और एक और थे उनके जोड़ीदार बड़े विद्वान आदमी, बड़े विद्वान धुरंधर, कितनी पुस्तकें लिख डाली और कितने प्रबंध, हजारों प्रबंध। हरिनाम का नाम छोड़ दिया, गुरु जी से भी हरि कथा नहीं सुने, तो हुआ क्या? अंत में चले गए फागाड़, कहां अंदर जाने चले। इसलिए हरि कथा भी सुनना है, ये सभी काम करना है, सभी काम करना है। ऐसा कोई भी ना काम हो जैसे कि चित्त पर ओट बन जाए, इसी के लिए यद्यपि हरिनाम में चित्त द्रवता का जो बाह्य लक्षण अशुकुलभ तथा ये हरि कथा कोई सुना, भगवान की कथा सुना और आंखों से आंसू आ गए, कभी किसी को रोमांचक उलभ भी हो गया, ऐसे देखते ऐसे ऐसे शरीर कर दिया, नाक से मुख से ये भी गर्मी हो, इसको देख करके बहुत से लोग मुग्ध हो जाते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति महाभागवत है, सबसे उत्तम महाभागवत। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, देखो भाई सब समय आंसू देखने पर, रोमांचक कंप पुलक देखने पर उसको असली मत समझो, उसके साथ में दूसरे लक्षणों को जो आंतरिक लक्षण है उनको भी मिला लो, दोनों को मिलाने पर यदि ठीक है तब तो ठीक है। एक आदमी यहां हरि कथा सुन रहा है, रोज आता है, मन बिना नागा ही आता है, किंतु हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि कथा सुनने में भी रुचि नहीं है। उसे पूछा जाए भक्ति किसे कहते हैं, वो भी नहीं बतला सकता, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं। हरिनाम दीक्षा भी हो गई, तो उसको हम क्या मानेंगे? जरूर जरूर हरि कथा सुनता है, ये बात ठीक है कि नहीं? तब सबसे न तो ये हरिनाम ठीक करता है, न हरि कथा सुनता है, न साधु संग। साधु संग करने से, हरि नाम करने से, हरि कथा सुनने से जरूर कुछ न कुछ होगा। आग में कोई चीज डाली जाएगी तो जरूर आग जलाएगी। आग में डाला गया और जली नहीं वो चीज, तो क्या समझे? वो आग ही ठीक नहीं है, नहीं तो जरूर जलाएगा, या कुछ गड़बड़ी है इधर उधर। इसलिए ये सब चीजों को बुद्धिमान लोग जो हैं वो अच्छी तरह से विचार करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा किसी का स्वभाव पिच्छुल होता है। पिच्छुल स्वभाव माने क्या? कोई कथा सुनने लगे और सुनते ही अपने बेटे की याद आ गई, बेटे की याद आ गई, और बेटे की याद आने से सीता जी का विवाह वर्णन हो रहा है, सीता जी की विदाई हो रही है। महाराज जनक एकदम पत्थर के समान खड़े थे, किंतु सीता जी जब जाने लगी तो पिताजी के गले में गलबहिया डाल दी और बड़ी जोर से रोने लगी। पिताजी पिताजी कहने लगे, मुझे कहां भेज रहे हैं? आपको तनिक दया नहीं है, आप बड़े निष्ठुर हैं। ऐसे रोने लगी जो उनके आंखों में थी। यह सुन करके अपनी लड़की का विदाई का वो स्मरण हो गया दृश्य, और सभी स्त्रियां रोने लगी, कुछ पुरुष लोग भी रोने लगे। इसी को कहते हैं पिछल। पिछल मैंने वो जैसे पिछल जाता है ना कोई चीज, ऐसे पिछल स्वभाव का। तो कहते हैं कोई पिछल स्वभाव के वजह से, अर्थात वे भाव प्रवण, उनका हृदय दुर्बल है और जरा कोमल है, इसलिए ऐसा सुन करके ऐसा हो जाता है, जल्दी से उनके आंखों में आंसू आए। वे थोड़ा सा दुख और सुख के द्वारा ही अध्ययन को पढ़ते हैं। कुछ भी थोड़ा सा दुख की बात हो या सुख की बात हो तो जाते हैं और धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। इस प्रकार आंसू का गिरना ये हृदय दुर्बल के अतिरिक्त। अब उसमें हम विचार करेंगे, अच्छा ये जो इसको आंसू आया, अब इसके घर पर या आश्रम में इसका व्यवहार कैसा? कोई भी चीज, कोई भी चीज जहां पर कि चित्त क्रोधित होने का आ गया, चंचल होने का आ गया, तो ये चंचल होता है कि नहीं? तो हो जाता है, मार फट करने लगता है, किसी को गाली गलौज भी बकता है, थोड़े से पैसे के लिए भी मार फट करने लग जाता है, और नाम गान में रुचि है कि नहीं? तो नहीं है, नाम तो हरि नाम तो करता नहीं है, कभी कभी करता है। भगवान के स्थलों में उसकी कैसी रुचि है? वहां पर भी नहीं है। क्या शांति अव्यक्त कालोत्तम, सब समय जीवन का अपना समय एक क्षण भी बेकार की बातों में नहीं गंवाता, ऐसा है कि नहीं? तो ये तो दिन भर उसी में लगा रहता है। ये सबको विचार करके देखेंगे, जैसे केवल आंसू गिर रहा है इसलिए ये भाव प्रमुख, इसका ये लक्षण। ऐसा ही मत मान लेना, यहाँ पर थोड़ा सा सुना और आंखों में आंसू गिर गए, और घर में जाकर फिर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने लग गए थोड़े से कुछ के लिए, अशांत चित्त हो गया, भगवान में ऐसी रुचि नहीं है, नाम में श्रवण में कीर्तन में नहीं, तो समझो ये चीज ये भक्ति का भाव नहीं। कोई कोई प्रतिष्ठा लाभ करने के लिए अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं जिसे सब लोग तो जानते नहीं है, इसे थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया ना, या गिर पड़ा वहां बेहोश होने का भाव दिखलाया, बस अरे ये तो महाभाव। यहां तक ही बड़े बड़े लोगों को भी मध्यम अधिकारी में प्रवेश करने वाले लोगों को भी ऐसा हो जाता है जो विचार करते हैं कि भाई यदि सचमुच का हो गया तो, किंतु ये आगे पीछे का विचार नहीं करते, इसलिए वो लोग भी किंतु मध्यम मध्यम अधिकारी होगा वो समझ नहीं ये ठीक, तब उसका आदर नहीं पड़ेगा। यदि सचमुच में दोनों अंतर और बारी दोनों लक्षण मिल गए उनके चरण में, इसलिए आंखों में आंसू और पुलक इत्यादि ही भाव का लक्षण है इसे नहीं कहा जा सकता है। अधिकांश रूप में देखा जाता है कि गंभीर महानुभाव भक्तों का चित्त हरिनाम कीर्तन के द्वारा द्रवित होने पर भी आंख से आंसू नहीं होते कभी कभी, जैसे रूप गोस्वामी के लिए कहा गया या और लोगों के लिए कहा गया। हरि कथा सुन रहा है ना? सुन रहे हैं, हरि कथा वर्णन कर रहे हैं किंतु आंखों से आंसुओं की धारा नहीं गिरती, रोमांच पुलक नहीं होता, तो भी ये नहीं कहा जा सकता जो उनका चित्त द्रवित नहीं है, यहाँ पर भूल होने की संभावना नहीं कर सकते। तब कैसे लोग विचार करेंगे? उनके भावों से और आगे पीछे को जो लक्षण बतलाए वो सब मिला करके देखो। यदि कोई व्यक्ति शांति अभक्तता विरक्ति मान शून्यता इसमें प्रतिष्ठित हो गए और भले ही नाम लेने से आंखों में आंसू नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको छिपा कर रहे ऐसा, उसको छिपा कर अभिथा नहीं, अभिथा दूसरा चीज, उसको छिपा करके उसको रखते हैं, उसको नहीं बता सकते दुख को शामिल क्या होता है, इसलिए नहीं कर सकते जो उनको भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर विचार। हम लोग भी पहले ऐसे ही समझते थे, जैसे ये सब लक्षण होने पर अंगुलिया जैसे ये महाभाव, ये नहीं ऐसा मत समझे। इसलिए बाहर में अश्रुपूर्ण कार्य के साथ भी यदि हृदय में हृदय द्रवित नहीं होता, हृदय कभी कभी चुपचाप कर रहे हैं हरि कथा या सुन रहे हैं एकदम पुष्णी भू एकदम चुपचाप, फिर इसके बाद में कथा प्रसंग पर और सभी बहुत से लक्षण हैं, यही तदस्मसार का यही अर्थ है। हृदय विकार का मुख्य लक्षण जो है वो यदि रहे तब तो ठीक है, शांति अभ्यस्त काल विरक्ति ये सब है कि नहीं, उसको मान थोड़ा सा नहीं देने से भी बिगड़ जाता है कि नहीं, अपमान होने पर थोड़ा बिगड़ जाता है कि नहीं, फिर बहुत दिनों तक दो चार महीना एक वर्ष कोई जीवन भर बात ही की तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं, ये सब चीजें नहीं, इसीलिए वो कहते हैं इसी श्लोक को यहां पर टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है, कि आर्द्रता ही रति का अर्थात भाव का मुख्य लक्षण है। यदि कभी कभी कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी गुगुक्षु माने भोग की लालसा करने वाले और मुमुक्षु मुमुक्षु माने मोह की इच्छा रखने वाले, यदि इनमें कहीं कहीं ये देखा जाता है, कुछ हरि कथा सुना और उनमें कर्मी लोगों को भी ज्ञानी को भी तपस्वी योगी इन लोगों को भी ये हो सकता है कि ये दिखाई पड़े क्या अश्रुपुलक रोमांच कम हो, किंतु उसको भाव नहीं समझना चाहिए। क्योंकि नाम में तो रुचि नहीं, भगवान की सेवा में रुचि नहीं, हरि कथा में रुचि नहीं, जल्दी से बिगड़ जाते हैं, चित्त का बैलेंस ठीक नहीं रख पाते, जल्दी से अशांत हो जाते हैं, भगवान के बसती स्थलों में क्रीड़ा स्थलियों में प्रीति नहीं है, तो ये सब जब लक्षण है तब नहीं है इनमें भाव कभी नहीं, तब क्या समझना चाहिए? उनको समझना चाहिए कभी वो रक्त्याभास भावाभास और कभी भावापरा
दीक्ष दुक्ष प्रतिपद
कहते हैं कि जो लोग निखिल स्पृहाओं से और इन सब अनर्थों से मुक्त हो गए हैं वो लोग भी इस रति का अनुसंधान करते हैं। ये साधारण रति नहीं, भाव जो है साधारण नहीं, सुदुर्लभा, बहुत यत्न करने पर भी ये रति नहीं आती, भाव नहीं आता। और इनमें जैसे तैसे आ गए दो दिन के कर्मी और उनमें आ जाएगा शादी, ये संपत्ति नहीं, यह बहुत गोप्य संपत्ति है, बहुत छिपा करके वैष्णव लोग रखते हैं, जो कि भजनशील लोगों के लिए भी सहजे नहीं भगवान देते हैं या भक्ति नहीं देती है। इस भाव को भुक्ति मुक्ति काम हेतु ज्ञान कर्म आदि अनावृत जो शुद्धा भक्ति है, अनाधिकारी से कर्मी और ज्ञानियों में ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता। बड़े बड़े महात्मा लोगों को ये नहीं होता है और उनको हो जाएगी। कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी जिनमें अनर्थ भरे पड़े हैं, देहात्म अभिमान है, ये संभव है। ये यदि इनमें यदि ये सब दर्शन करें तो बालकों को केवल बालक माने अज्ञ व्यक्ति अर्थात अनभिज्ञ व्यक्तियों को ही चमत्कार रहता है। ऐसा तो कभी देखा नहीं, लोग कोट करने लग जाता है। किंतु एक बात है, जिसका शुद्ध भाव है उसको देख करके लोगों पर कुछ स्थायी भाव अंतर तक वो दाग लगता है। आज जो ऊपर वाले ही दिखलाते हैं वो दाग नहीं होता, नहीं समझ में आया? यदि कोई ऊपर से बाहरी चिन्हों को दिखला कर रहा है अभ्यास से अथवा अपने स्वभाव के पिछले स्वभाव होने के कारण, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी या भक्ति नहीं है वो दिखला रहे हैं, तो उसका प्रभाव लोगों पर कम पड़ता है। केवल मूर्ख लोग जो हैं या बालक जैसे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते उन्हीं पर थोड़ा सा क्षणिक प्रभाव है। आज जो भजन प्रिय हैं न जाने क्यों उन पर उनको रुचि नहीं होगी, देख करके उस पर कोई भाव ही नहीं आएगा। इसको यदि होता है तो उसको रत्याभास अर्थात यथार्थ रति नहीं है, इस प्रकार से उसको समझें। इस विषय में अधिक जानने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में इसको अच्छी तरह से देखना। जो लोग निष्किंचन शुद्ध भागवत हैं, गुरुदेव की कृपा लाभ करते हैं, गुरु के अनुगत्य में कणशः शुद्ध हरि भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति जिसको होती है उनको ये भाव संभव है। इसलिए इस श्लोक को बतलाया गया, तदस्मशारम यत गृह्यमाने हरिनाम। यदि ऐसी भक्ति किसी को हो, भावावस्था जिनको आ गई हो, ऐसे भक्त जगत में बहुत दुर्लभ, क्वचित, बहुत क्वचित हैं भी तो वो हम लोग उनको वो ऐसे छिपा करके रखते हैं जो साधारण आदमी नहीं समझ। ऐसे व्यक्तियों का संग होने से भक्ति सहजी, अन्यथा भक्ति नहीं। इसी के लिए बतला रहे हैं, नाम में यदि रुचि हुई और हरि कथा में रुचि हुई तो कृष्ण का रूप हृदय में स्फूर्ति होगा नाम करते करते, और धीरे 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 भगवान की स्थायी भक्ति अर्थात ये जो कहा भाव ये उदित हो सकता है। कृष्ण करणामृत में बतला रहे हैं, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि सैनिक स्वरोती मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम बतया समय प्रतीक्षा। भक्ति स्वयं स्थिरतरा यदि हे भगवान कारण दिव्य मंगल जी का है, हे भगवान यदि आपके चरणों में किसी को स्थिर तरह भक्ति यदि हो गई, श्या यदि हो गई, तो क्या होगा? दैवेन भगवत कृपा से उनकी दिव्य शोर मूर्ति हृदय में एकदम प्रतिफलित हो गई, हृदय में उदित हो गई। और सुनने पर क्या होगा? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि से बते, उस समय मुक्ति हाथ जोड़ करके उस भक्त के सामने, प्रभु आप हमारी सेवा ग्रहण करें, बार बार वो अनुरोध करेगी। धर्म अर्थ काम ये सब की तो बात ही क्या, ये तो समय प्रतीक्षा करेंगे, ये तो उनसे प्रार्थना भी करने योग्य नहीं, बहुत दूर रहे, बहुत से दूर से हाथ जोड़ करके लाइन में खड़े रहेंगे। मुक्ति ही स्वयं हाथ जोड़ कर भक्ति स्थिर कराध्या ब्रजेंद्र नंदन तुम्हार किशोर मूर्ति तार प्राप्त है। कहते हैं कि जिसकी भगवान में ऐसी भक्ति हो गई, भक्ति माने साधन भक्ति, साधन भक्ति से वो पहुंच करके भाव भक्ति में आए, ऐसी भाव भक्ति जिसके हृदय में हो गई है, उस समय में कभी कभी किसी के हृदय में कृष्ण की किशोर मूर्ति प्रतिफलित हो, कभी कभी बिल्ल मंगल का हुआ और लोगों को भी कभी कभी हो सकता है, नारद जी को हुआ था कुछ समय के लिए, तो दिव्य किशोर नहीं हुआ, उनको भी नारायण जी का उनका हुआ, कभी कभी क्या इनकी स्फूर्ति हो सकती है, भाव जितना ही परिपक्व अवस्था मिल जाएगा सब समय उसी में मत रहे, ऐसे लोग ही भाव की परिपक्व अवस्था में वो स्वरूप सिद्धि उनकी होती है, और ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान की वो जोग माया की कृपा से प्रकट ब्रज में जाकर के तीर्थ, और वहां पर बाकी की चीजें वहां पर पूर्ति होने पर कृष्ण लीला में कृष्ण के अपराकृत गोलोक ब्रज में वो पर। चैतन्य महाप्रभु भी दिखला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते, वेदांत में निर्विशेष ब्रह्म की चिंता क्यों नहीं करता, सब संसार झूठा है, मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी चिंता नहीं करते, ये वेदांत में हमारा अधिकार नहीं है, गुरु जी ने हमें मूर्ख देकर के शासन किया, मत पढ़ो वेदांत क्या, तुम हरि नाम करो और ये तुमको मंत्र देता हूं, बस मंत्र दिया और मैं घर में आकर के उसका जप करने लगा, कीर्तन करने लगा, महामंत्र का कीर्तन और गुरु मंत्र का जप करने लगा, कीर्तन करने लगा, ये हरि नाम हरे कृष्ण ये महामंत्र और गुरु प्रदत्त गोपाल मंत्र और काम गायत्री इत्यादि महाप्रभु के इत्यादि के जो मंत्र हैं ये सब मंत्र कुछ दिनों में ही नजर मुझे क्या हुआ, मैंने एक गोपाल बालक को देखा, श्याम सुंदर कछनी काछे पीताम्बर पहने और एक कदम्ब वृक्ष के ऊपर में उभंग रूप में खड़े हुए मैंने देखा, उसने हमारे तरफ में हंसते हुए मधुर हंसी और मुझे बिना मोल का खरीद लिया, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, वो पीछे हटता गया, अंत में जब बेग समय दौड़ा तो न जाने कहा तुम जो मुझे बस गिर करके अचेतन, बहुत देर के बाद में जब चेतनता हुई तो कभी रोता कभी चिल्लाता कभी कुछ करता, मैं अपने गुरु के पास में गया, पूछा कि गुरु जी आपने ये कौन सा कैसा मंत्र दे दिया, मैं अविष्ट होकर के कभी नाचता हूँ कभी गाता हूँ कभी कुछ करता हूँ, अब मेरे ऊपर में आप कोई अपना कंट्रोल ही नहीं रह गया। गुरु जी ने मुझे आलिंगन किया, बोले बेटा तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, तुम्हारा जीवन इसकी अनुभूति दर्शक, यदि ऐसा हो जाता यही मंत्र देने की सार्थक, आज तुम उसके साथ साथ में तुम तो सार्थक तुम्हारा हुआ, हमारा भी जीवन धन्य होगा तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर, ऐसा होना चाहिए। हम लोग इतना दिन हरिनाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किंतु कभी खेद भी नहीं आता क्या है ये, कैसे हम जीवन अतिवाहित कर, और चीजों के लिए तो है करनी किंतु इसके लिए है नहीं। जो इसके बाधक में है इसमें, उन सब आदतों को, उन सब चीजों को, बाधाओं को दूर करने की चेष्टा करो, निष्कपट सरल चित्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। उसमें मुक्ति भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी। धर्म अर्थ काम ये साधित मेले की तरफ में हजारों लाखों उसके पीछे पीछे रुपए और क्या क्या सब वैभव सब कुछ। अधिकांश लोग आजकल जो भजन करते हैं यही सब के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति इत्यादि और सांसारिक सुखों के लिए, भगवान के लिए नहीं। बहुत कम दुर्लभ लोग मिलते हैं। कैसे होगा, कैसे ये स्थिति आएगी, उसके लिए फिर श्रीमद् भागवत में बतला है, परस्परान कथनम पामानं भगवत जसः मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथ आत्मन स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो अभौहरं हरि भक्त्या संज्ञातया भक्त्या विभक्त उत्पूर्कं तनु। यही इसी के द्वारा हम लोग उस भाव को प्राप्ति कर सकते हैं। साधारण अर्थ आज बतला देते हैं, कल विशेष अर्थ को बतलाऊंगा, और इसी की व्याख्या ही समझो भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वली या गोस्वामियों के ग्रंथ। इसी को शास्त्र में से देकर के उस गोस्वामी ये सब ग्रंथ बनाए, और जो गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, कैसे ये भक्ति हो सकती है। परस्परानु कथनम पामनम भगवत जसम, भगवान की लीला कथाओं को जो तत्व इत्यादि से वैराग्य इत्यादि से सब परिपूर्ण है उनको परस्परानु कथन परीक्षित महाराज जी और सुखदेव गोस्वामी जैसे कर, चैतन्य महाप्रभु और स्वर्ग दामोदर राय रामानंद जैसे कह सकते, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे कह सकते, रूप गोस्वामी गुरु और शिष्य जीव गोस्वामी जैसे कह, और इसी परंपरा के अनुसार में यदि हम लोग भगवान के ऐसे समस्त अनर्थों को दूर करने वाले महा औषधि स्वरूप भगवान के पावन जसों को यदि श्रवण करें, ऐसा करते करते मिथो रति, पहले साधन भक्ति, साधन भक्ति से फिर क्या होगा निवृत्ति, रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मतमात्मा, पहले साधन साधन भक्ति, पीछे भाव और पीछे निवृत्ति। निवृत्ति माने क्या, आनंद, तो तुष्टि माने ये प्रेमा भक्ति में चला गया, प्रेमा भक्ति में ये तुष्टि और निवृत्ति, आनंद घन आनंद की अनुभूति होगी, और तुष्टि और किसी भी विषय में रुचि नहीं जा सकती, सांसारिक विषय में एक मिनट का समय भी नहीं दे सकता, ऐसा ही वैराग्य वैराग्य का होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी को या हमारे गोस्वामी को एक मिनट का समय इधर उधर देने का, दिन रात उसी में, ऐसे से पहले रति, रति भाव और भाव से तुष्टि। यहाँ पर तुष्टि में ऐसे समझ लो भी, अपनी तुष्टि कब होगी, जब राधा कृष्ण की तुष्टि होगी, तो राधा कृष्ण की तुष्टि में ही अपने जीवन को सार, वो तुष्टि कैसे होगा, वो कि
भक्ति पर सन
वो पहले अभी आज भी कल बताया साधक रूपे न सिद्ध रूपे, इसके सिद्ध रूपे न रूप को स्वामी रूप मंजर इत्यादि के रूप में श्रीमती राधिका की जो सेवा करते हैं, इसी के द्वारा उसकी तुष्टि हो गई, इसके बीच में और कोई तुष्टि का प्रश्न नहीं। अब तुष्टि के बाद में फिर निवृत्ति, आनंद में मग्न, प्रति खनन
पूर्णामृता साधन
पूर्णामृता साधनम आत्मा आत्मा के द्वारा शरीर के द्वारा तो उस पर जो आएंगे लक्षण होंगे बस आत्मा के द्वारा इस सबका अनुभव स्मरंत स्मारयंत मिथो अवहरण अभवहरण भाई उनको स्मरण करते हुए स्मरण कराते हुए क्या भगवान की जो अगव अग को दूर करने वाली पापों को दूर करने वाली अनर्थों को दूर करने वाली भगवान हरि की जो कथाएं हैं उसको परस्पर करते करते भक्त्या संज्ञात्या उस भक्ति के द्वारा अर्थात साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति और भाव भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी जिससे कि ये चित्त द्रवित भी होगा और रोमांच कंप अश्रु इत्यादि भी यही भक्ति का सार मन छात्र श्लोक माता ने पाठ किया प्रदर्शन सारणी प्रदेवी समान नाम देव न प्रियकारी नित्य जन किसको किसको ये याद किसको किसको याद उनको समझना चाहिए कि जन्म जन्मों के ये घोर अपराधी है इस जन्म के लिए अपराधी है नहीं तो भगवान का नाम इतना प्रतिभाशाली शक्ति संपन्न और उसका लेने से और हमारा चित्त द्रवित नहीं होता कभी कभी आंखों से आंसू आने पर भी यदि चित्त द्रवित नहीं हुआ तो भी लोहे के समान कैसे यदि स्त्रियोचित स्वभाव होने से शिक्षल स्वभाव होने से यदि जैसे स्त्रियां परस्पर बात करती हैं रो देती कोई दूर की बात कोई तो रो देती ऐसे ही स्वभाव इनका होता है ऐसे स्वभाव से भगवान के लीलाओं को सुन करके और अपने संसार की तुलना करके कोई कोई हो सकता है किसी को और लक्षण की तुलना कर सकता किंतु यह हृदय द्रवित होने का ये लक्षण नहीं है हृदय द्रवित होने का लक्षण क्या है उसको मिलाएंगे ये शांति रक्षता ये उसमें लक्षण नहीं सुना आंख से रोता है बस हम भी देखेंगे ये कम भागवत हो गया है समक्षण उसको ये विचार करो क्रोध कारण उपस्थित होने पर भी चित्त क्रोधित होता है अशांति का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त अशांत होता है संसारिक वस्तुओं के प्रति लोभ हमारा है कि नहीं भगवान की भक्ति के अतिरिक्त अपनी प्रतिष्ठा के लिए संसारिक कोई चीज के लिए हमारे अंदर में कोई लालसा है कि नहीं भगवान के स्थानों में दर्शन में हमको रुचि होती है भगवान के नाम में निरंतर अव्यर्थ का आलोक करता है कभी भी अपना समय दूसरे कामों में व्यय नहीं करता भगवान से जो लीला स्थलियां हैं उसमें प्राण से रहने की इच्छा उसकी होती है बड़ा प्यार करता आशा बंदर बंदर जरूर किसकी किंतु साथ साथ में उत्कंठा लगी रहती उसके लिए कब मिलेंगे कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे किसके पास जाऊं कहाँ जाऊं क्या करूं ऐसी बात हो जाती है तब ये मिलाकर के देखने से अंतर और बाहरी लक्षण तब समझो कि उसमें भाव है या इसलिए केवल रोना ही हुआ और वो नहीं हुआ हृदय द्रवित नहीं हुआ उसके लक्षण उसमें नहीं है तो समझो कि हमारा हृदय पत्थर का है और आज से जब से हम लोग आए हैं मठ में मनुष्य जन्म लेकर के इस मठ से संबंधित हुए हैं हरि कथा सुन रहे हैं हरि नाम कर रहे हैं और चित्त द्रवित नहीं तो समझो कि हमारा घोर अपराध तो इसलिए खूब निष्ठा के साथ में हरि नाम करना चाहिए जिससे कि ये लक्षण आने लक्षण आने के लिए ही नहीं वो क्षण अव्यर्थ का उत्तम ये सब आना चाहिए ये स्वाभाविक रूप में गाय गाय साधन किया जाता है पानी के, स्वाभाविक रूप में भगवान का नाम करते चलो, अपराध से दूर रहो, हरि कथा वैसे सुनो, ऐसे कार्य करने की चेष्टा करो, वैष्णव को गुरु को भगवान को धोखा मत दो, ऐकांतिक रूप में भजन करो और सुनने की चेष्टा करो, तब तो हमें तो सुन लिया बस खत्म हो गया, तो महाराज जी याद नहीं, मन याद नहीं है, भूल गया, वो तो सभी जीवन ही तुम लोगों ने खो दिया। रुचि नहीं होती है ना पाठ करने की, इसलिए नहीं रुचि होती है, तुम लोगों को लालसा नहीं, तुम लोगों की मैंने किस चीज में रुचि थोड़ी सी रुचि होती है, पाठ करते ही क्या करेंगे जब तुम ये सब इसीलिए भागवत पढ़ते हैं, इसलिए चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं, कम सम लोग उन्नत भक्ति कोई फिर खराब हो गया है
परस्त्रांग
परंपराणु कथन कामन भगवत जैसा यही हुआ परंपराणु कथन परंपराणु कथन कामन भगवत जैसा मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथ आत्मा स्मरण का स्मारण मिथो मिथो अभव हरण हरि भक्त्या संज्ञा भक्त्या विभ्रत ये जो ऊपर में जो बतलाया गया है ये कैसे होगा कैसे होगा उसके लिए परस्परानुपथन पावन भगवत भक्तगण परस्पर कृष्ण रखा जाता है कहरति कृष्ण सुख परस्पर रखा है परस्पर कोई सीखने वाला जो भक्त है साधक अपने से उन्नत साधक भक्तों के बिना या सिद्ध भक्तों के पास जाएगा और उनसे सीखेगा क्या सीखेगा जैसे वैष्णव लोग हैं उन्नत अधिकार वाले वहां पर जाकर के नीचे कनिष्ठ वाला जाएगा या मध्यम वाला साधक जाएगा कहाँ जाएगा भक्तों की गोष्ठी में जाएगा और उनको वाच करेगा देखेगा जी अच्छा भाई किम बदे गीता में है ना किम बदे किम प्रतिभा से कैसे चलता है कैसे कोई चीज करता है
कैसे भाषा
कैसी उसकी भाषा होती है कैसे वो बोलता है ये सब सीखेगा ना ऐसे ही वैष्णवों के पास में जब उनके समाज में जाएंगे तो देखेंगे अच्छा वो कैसे चलते हैं तो वो क्या करते हैं तो ये जाकर के देखेगा कि परस्परान कथन ये यहाँ पर वैष्णव हो गए हैं परस्पर क्या बात कर रहे हैं पावन भगवत जैसा भगवान के जो परम पवित्र करने वाले जो जस पूजा हैं करनाए उनका देखो तो कैसे सुंदर रूप से प्रमत्त होकर के मेरे दान कर रहे हैं अब यहाँ पर वो क्या करेगा वो साधक है वो सीखे कैसे परस्पर व्यवहार होना चाहिए वो सीखे जब देखा ये दो वैष्णव एक का एक चोटी पकड़ करके मारामारी करते हैं झगड़ा करते हैं लड़ाई करते हैं तो वो क्या सीखेगा तो दिन सीखेगा नहीं तो वहां से भाग जाएगा ये देखेगा बड़े प्रेम के साथ में भगवान की लीलाओं का
किंता अथ अथ अभौगुहा जो जितने पाप हैं पापों को दूर करने वाले या मूर्तिमान जो अभासुर नामक राक्षस उसको भी मार करके उसको मुक्ति दे देने वाले जो भगवान उनकी कथाएं भी ऐसी हैं। उनकी कथाओं को बड़े प्रेम के साथ में परस्पर कथनान कथन वो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं परस्पर। तो उनसे ये सीखेगा आगे हमको भी इसी तरह से भगवान की कथाओं को परस्पर आवाज करना, ये दूसरी कथाओं का नहीं। मिथोरथी, मिथोरथी मैंने वे हरि कथा में दोनों की रुचि है, भगवान की कथा वर्णन करने में इनकी रति है। रति मैंने वैसा भाव उत्पन्न किया और ये देख रहा है साधक, उन लोगों को देख रहा है, अपने अभी नहीं है
परस्पर।
वो लोग क्या करते हैं
पर्सन,
वो थर्ड पर्सन से होकर के देख रहा है और वैसा ही वो शिक्षा करता है। शिक्षे इसके बाद ही आए भगवतान धर्मान सिखे गुरु दैव आत्म दैव, ये सीखेगा मठ शिक्षा करने की चीज, सब साधक लोग आते हैं ऐसे ही करें। तो मिथुरथ ये भी सीखेंगे राधा और कृष्ण की करसे परस्पर परस्पर की रति है उसकी, जिसको वो आलोचना करता है उसको भी ये सुने कि कैसे होने से राधा कृष्ण जो परस्पर परस्पर की जो प्रीति करते हैं उनकी रति कैसी होती है यहाँ पर।